हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज इसके प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम कक्षा में। और आज हमारे बीच में उपस्थित है बहुत ही विशेष वक्ता इसक्रेस मुकुंद दत्त प्रभु। आप में से जितने भक्त वृंदावन जाते हैं आपने अक्सर प्रभु जी के वहां वृंदावन धाम में दर्शन किए होंगे। प्रभु जी इस्कॉन वृंदावन के हेड पुजारी हैं। जितने भी आप देखते हैं प्रतिदिन राधा श्याम सुंदर कृष्ण बलराम गौ निताय को जितना सुंदर श्रृंगार होता है तो प्रभु जी वहां पे हेड पुजारी की सेवा करते हैं। इसके साथ साथ वृंदावन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन में प्रभु जी विभिन्न कोर्सेज में भी पढ़ाते हैं, वहां पे शिक्षा देते हैं और साथ में डीटी वर्शिप मिनिस्ट्री में भी प्रभु जी बहुत डेवलप करने में प्रभु जी का बहुत बड़ा हाथ है। और फर्स्ट टाइम प्रभु जी यहाँ इस्कॉन पंजाबी बाग में लेक्चर दे रहे हैं तो हम आइए एक बार जोरदार हरि बोल बोलकर प्रभु जी का स्वागत करें। और प्रभु जी आज का जो लेक्चर है वो हिंदी में ही देंगे और आप सब भक्तों से अनुरोध है कि आपके पास जो मोबाइल फोन्स हैं कृपया आप उसको साइलेंट कर लीजिए या उसको ऑफ कर दीजिए ताकि लेक्चर के दौरान कोई बाधा ना हो। हरे कृष्णा।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नाष्टपयेष्वरेषु नित्यं भगवतु सेवया भगवत्योत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। सो आज हम श्रीमद्भागवतम् अथवा स्कंद अध्याय पांच श्लोक 33 से पढ़ रहा है। अम्भास्तु यद्रे तो दार्य वीर्यम् सिद्यन्ति जीवन्त्युत बाधमानः लोकाय तो अथ किल लोलकापलः प्रसीदतं न समः विभूतिः। अम्बा, इस श्लोक में या अन्य लोकों में दिखाने वाली जल राशि तू लेकिन या त्रेता उनका वीर्य उदार वीर्यम इतना शक्तिशाली सिद्ध्यन्ति उत्पन्न किया जाता है जीवन्ति जीवित रहता है उत्तम निस्संदेह वर्धमाना फूलते फलते है लोकां तीनों लोक यथा जिससे अथा भी अकील लोकपाला ब्राह्मण भार के सर देवता प्रसीदतां प्रसन्न हो ना हम पार सा वो महाविभूति असीम शक्ति वाला पुरुष। अनुवाद तत्पर्य शिला ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा शिल प्रभुपाद के अनुवाद। सर्विरात जगत जल से उद्भूत है और जल ही के कारण सर्वजीव बने रहते हैं, जीवित रहते हैं तथा विकसित होता है। यह जल भगवान के वीर्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अतएव इतनी महान शक्ति वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हम पर प्रसन्न हो। तत्पर्य तथा कथित विज्ञानियों के सिद्धांतों के बावजूद इस पृथ्वी लोक पर तथा अन्य लोकों में जल की विपुल मात्र की सृष्टि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के मिश्रण से नहीं होते हैं। पृथ्वी जल को कभी कभी भगवान का पसीना तथा कभी कभी वीर्य कहा जाता है। जल से ही सर्वजीव प्रकट होता है और जल से ही वे जीवित रहते तथा बढ़ते हैं। यदि जल ना होता तो सर्वजीवन समाप्त हो जाता। जल हर एक के जीवन का स्रोत है। अतएव भगवत कृपा से हमें विश्व भर में इतना जल उपलब्ध है। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जना सदाकय चक्षुरन्मिलितं येनं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपाकदामयं ददाति स्वापदन्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिककांता राधाकांता नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणामामि हरि प्रिये। पंचकल्पतृभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च परीतानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिव हरि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरेर्नाम 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 एव केवलं कौलं नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। अम्बस्तु यद्धृता उदारवीर्यं सिद्ध्यन्ति जीवन्ति उक्तवर्धमाना लोका यतो अपकील लोकपाला प्रसीदतं नासः महाविभूति। सर्विरत जगत जल से उद्भूत है और जल ही के कारण सर्वजीव बने रहता है, जीवित रहता है तथा विकसित होता है। यह जल भगवान के वीर्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अतएव इतनी महान शक्ति वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हम पर प्रसन्न हो। तो यहां पर देवताओं भगवान श्री विष्णु क्षीरसागर के पास पहुंच के प्रार्थना कर रहा है, स्तुति के चरण करता है। और यहाँ पर इन श्लोकों में ब्रह्म जी के द्वारा जो सबसे बड़ा देवता है और जब इस भौतिक जगत में और जैसे इसमें उल्लेख है और हमने सुना है अलग अलग जगह में लिखा है भागवतम में, जब देवताओं और असुर लोग के बीच में लड़ाई होता है तो देवताओं भगवान के पास जाता है, उनसे प्रार्थना कर रहा है उनकी सहायता मिलने के लिए। और जैसे कृष्ण के जन्म से पहले भी ब्रह्मा जी और दूसरे देवता क्षीर सागर के पास पहुंच के और ब्रह्मा जी ज्ञान करते हुए भगवान से प्रार्थना करते थे आने के लिए, निवेदन किया है इस भौतिक जगत में उनकी सहायता देने के लिए। परित्रणाय साधनम विनाश च दुष्कृतम, तो भक्तों की रक्षा की सुरक्षा के लिए निवेदन करता है। तो यहां पर इस श्लोक में ब्रह्म जी कहता है कि जो जल जो है इस भौतिक जग में जो महत्वपूर्ण है हमारे लिए, बिना जल तो इस भौतिक जगत में जीना संभव नहीं है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ है एक दृष्टि से। इसलिए यहां पर कहता है और कि ये जल वस्तु में ये भगवान के वीर्य है। और प्रभुपाद ने तत्पर्य में उल्लेख किया है स्वस्ति के अनुसार कि कहा जाता है कि जल जो है इस भौतिक जग में भगवान के का पसीना है, दोनों दोनों साय है जो शास्त्र में लिखा है, जो गुरु जान जाता है कहता है ये सत्य है, परम सत्य है। तो जैसे रोज रोज उठ के सबसे पहले हम क्या करते हैं, नहाता है, हाँ पानी भी पीता है, लेकिन इससे पहले भी वास्तव में हमको उठ के भगवान को गुरु और इष्ट देव को प्रणाम करना चाहिए सबसे पहले। इसके बाद पानी पीना है, इसके बाद स्नान लेना चाहिए, लेकिन तो भगवान से और प्रार्थना करने के बाद स्तुति अर्पण करने के बाद यथाशक्ति यथास्थिति जिससे सरल भक्त जब उठता है तो सुबह जय गुरुदेव जय प्रभुपाद जय गुणिता जगन्नाथ बलदेव जय राधा राधिका रमन को चरण करता है। और ब्राह्मण जो है अलग अलग जिससे भूमि देवी के श्लोक का चरण करता है और जिसे शास्त्र में लिखा है अलग अलग श्लोक कृष्ण के गुणगान को चरण करता है, चार पांच श्लोक इससे ज्यादा भी। इसके बाद तो पानी पीता है, तो पानी बहुत महत्वपूर्ण है। और सुबह से पानी पीता है, कुछ नहीं लेता है उठने के बाद, कभी कभी कुछ दवाई भी लेना है, लेकिन अन्यथा सिर्फ पानी पीना है, कुछ और नहीं ले सकता है शास्त्र के अनुसार भी। पूजा करने से पहले कुछ नहीं लेना है, सिर्फ पानी ले सकता है, दूध नहीं पी सकता है उठने के बाद। आजकल तो भौतिक जगत में भारतवर्ष में भी उठ के क्या कहता है, चाय पीता है, ठीक है हमारी बात नहीं है, लेकिन इसमें भी पानी है ना, बिना पानी तो चाय नहीं मानती है, दूध भी इसमें थोड़ा सा है लेकिन ज्यादा क्या है, पानी है ज्यादा है। तो लेकिन जो शास्त्र के अनुसार चलता है तो सिर्फ पानी लेता है उठ के, इसके बाद नहाता है, पानी से नहाता है, दूध से नहाता है, दूध तो अभिषेक के होता है, स्नान होता है, लेकिन सिर्फ ठाकुर जी के, लेकिन हमारा नहीं होता है। सिर्फ ये गुरुजन के कभी होता है, और जब संस्कार होता है छोटे से बच्चे के नामकरण समय, उसी समय अभिषेक होता है बच्चे के, उसी समय भी दूध से अभिषेक करता है बच्चे के, लेकिन सिर्फ एक बार होता है नामकरण के समय, अन्यथा सिर्फ पानी से जल से नहाता है। इसके बाद क्या होता है तो हमको मालूम है, अगर नहीं नहाता है तो सूची नहीं है, गंदे है। अगर कोई बोलता है जैसे पश्चिम देश में हर लोग सुबह नहीं नहाता है, और आजकल हिंदुस्तान में भारतवर्ष में भी होता है, हम तो 30 साल से यहाँ पर है और मुझे भी मालूम है, तो वक्त नहाता है, और जो शास्त्र के अनुसार वैदिक संस्कृति के अनुसार चलते ये तो नहाता है सुबह। लेकिन आजकल भी भारतवर्ष में भी या हिंदुस्तान में भारतवर्ष जब कोई कहता है ये शास्त्र के अनुसार है, शास्त्र का पालन करता है, जब कोई बोलता है हम हिंदुस्तानी है, तो बिल्कुल शास्त्र के अनुसार नहीं चलता है वास्तव में। और इसी समय भी उठ के चाय पीता है, समाचार पत्र पढ़ता है, इसके बाद बिस्किट भी खाना है और ये खाना वो करना है, इसके बाद तो शायद नहाता है, कभी कभी बाद में भी नहाता है, जल्दी जाना है ना, तो दफ्तर में ऑफिस में बिजनेस करने के लिए जो भी है, तो बाद में भी नहाता है कोई लोग तो। लेकिन वास्तव में सुबह उठ के पानी पीना है, सोचो लो तो जाना ही है, इसके लिए भी पानी चाहिए, और इसके बाद नहाना चाहिए, स्नान लेना है, इसके बाद तो जब शुचि है, जब दर्शन लेते हैं भगवान के, इसके बाद तो वास्तव में आगे जा सकते हैं और अच्छी तरह से जप कर सकता है, इसे करते हुए आध्यात्मिक अवस्था पर पहुंच सकता है। तो जाल बहुत महत्वपूर्ण है, और ऐसे करते हुए शरीर शुद्ध हो जाता है और स्वास्थ्य भी ठीक रहता है जब पर्याप्त पानी पीता है। मैं अभी तो कभी कभी हो जाता है, बीमारियां आ जाती है, और वृद्धावस्था में भी तो स्वास्थ्य कभी कभी ठीक नहीं है, और कर्म के अनुसार भी, जैसे मेरा शरीर तो ज्यादा समय ठीक नहीं है, पुजारी के लिए भी कहा जाता है शास्त्र में भी, तो ये आयुर्वेद के अनुसार जो पुजारी जो है, पुरोहित जो है, लगभग हमेशा उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो क्या कारण है कि ज्यादा उपवास रखना है, क्योंकि जब अलग अलग संस्कार होता है तो यजमान को बताना चाहिए कि संस्कार से पहले कुछ लेना उचित नहीं है, उपवास रखना है। लेकिन क्या कहता है कि अगर कुछ लेना है ठीक है तो पानी ले सकता है, यहां पर भी देखिए पानी ले सकता है, लेकिन दूसरे कुछ चीज नहीं ले सकता है, तो उपवास रखना चाहिए, विशेष करके जब दोपहर के समय जैसे दीक्षा स्नान हो और गृह प्रवेश हो या तो नाम संस्कार हो, ये ज्यादा समय संस्कार दोपहर के समय होता है, सुबह या दोपहर के समय, सिर्फ विवाह संस्कार जो होता है ज्यादा समय शाम को रहता है, और बाहर के लोग रात को भी करते हैं, लेकिन हम रात को नहीं करते हैं, शाम के समय, रात को हम सोता है जल्दी और जल्दी उठता है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर है भारतवर्ष में और बहुत बड़े शहर में दिल्ली में है हस्तिनापुर या कहते हैं, तो क्योंकि लोग क्या तो लौकिक भी मत है, इसके अनुसार रात को रात्रि बेला है, लेकिन वास्तव में शास्त्र ऐसा ना है कि शास्त्र के अनुसार है कि रात को करना चाहिए। और ये भी आजकल की वास्तव में ठीक से नहीं होता है ज्यादा समय, उपवास नहीं रखते हैं लोग, प्रसाद पाता है वो प्रसाद भी नहीं पाता है, खाना लेता है, इसके बाद तो रात को 12 बजे 1 बजे ज्यादा लोग तो चले गया, और 2-4 लोग है ना जो वार वधु तो है, और जो संबंधी जो है गणेश संबंधी माता पिता रहता है, भाई भी रहता है, और दूसरे सब ज्यादा लोग तो चले गया, और रात में तरह से कुछ पूजा करना है, यज्ञ अनुष्ठान भी होता है, फेरे होता है, लेकिन ज्यादा कोई मतलब ना है, वहां पर जाता है खाने के लिए, दूसरे से मिलने के लिए, तरह से बात करना है, लेकिन क्या बात करता है, ससुर क्या किया है मालूम है, सुन लिया है, भाई क्या करता है, ये है वो है, भौतिक चीज के बारे में बात चलता है, ये ठीक ना है वास्तव में। तो इसलिए जो वैष्णव जो है, वैष्णव पद्धति है कि ये देखता है तो समय कौन सी समय विवाह संस्कार करता है, तो ये तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तो अलग अलग समय है, शुभ समय जो है, ऐसा ना है कि सिर्फ रात को है, क्योंकि लोगों की इच्छा रात को करने के लिए, तो क्योंकि दिन दिन में तो पैसे तो कमाना है, इसलिए भी तो ये भी सही बात है, लेकिन फिर भी तो इसके बाद रात को खाना खा के भी थोड़ा सा कुछ इसके बाद हम जाता है, किसी रात को तो उनके विवाह संस्कार है, लेकिन भक्त लोग देखता है कि यथासंभव तो रविवार तो करेंगे, और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुभ समय निकलता है, उसी समय भी दोपहर के समय भी ठीक है, जब ठीक है तो जब तब तो करता है, और तो उसी समय तो उपवास रखता है वैष्णव भी, और कुछ लेता है सुबह से पानी लेता है, और उसके बाद जब यज्ञ अनुष्ठान होता है तो सबसे पहले वास्तव में पूजा होता है, और पूजा के लिए भी पानी चाहिए, आचमन करना है सबसे पहले, इसके लिए पानी चाहिए, उसके बाद पूजा होता है, जब विस्तार रूप से होता है तो 164 पूजा होता है, सबसे पहले गुरु की पूजा होता है, गौरांगा पूजा, इसके बाद कृष्णा पूजा होता है, और 164 होता है, इसमें सबसे पहले ठाकुर जी के स्वागत होता है, इसके बाद उनके अभिषेक होता है, तो इसके लिए भी जल चाहिए, पानी चाहिए, और इसके बाद पंचोपचार पूजा होते हैं, गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य। तो शुरुआत में ये इसका नाम है कुशांति का, ये होता है, तो इसके बाद तो कन्यादान और अग्निदेव की आवान पूजा उहतिया अर्पण करता है, और उद्दीच्य कार्य वैष्णव होमा सप्तपदी फेरे ये सब होता है, ठीक है। तो वैष्णव के अनुसार, वैष्णव सिद्धांत के अनुसार, हमारे गौरी वैष्णव संप्रदाय के अनुसार हमको ये सब संस्कार तो करना ही है। तो जल बहुत महत्वपूर्ण है, ठाकुर जी की सेवा में जरूरत है, दूसरे पदार्थ भी है, तो जैसा अभिषेक होता है जब तो शालग्राम शिला की अभिषेक होता है, या गिरिराज महाराज तो दूध से भी अभिषेक करता है, या पंचमृत से शालग्राम शिला के, तो लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है जल, तो अपने जीवन में भी जल तो जरूरत है। कभी कभी भक्त लोग तो जैसे उपवास तो रखता है, और एकादशी तिथि में तो अत्युत्तम है निर्जल, निर्जल क्यों, निर्जल उल्लेख है, निर मतलब बिना जल भी, क्योंकि सबसे पहले उपवास रखना मुश्किल है लोगों के लिए, जो जैसे जैसे एकादशी तिथि जन्माष्टमी तिथि उपवास रखना है, अत्युत्तम है निर्जल, लेकिन अगर यह संभव नहीं है तो जल ले सकता है, लेकिन सबसे पहले नियम जाल, बिना जाल रहना चाहिए। अगर ये संभावनाएं है तो जाल ले सकता है, पानी ले सकता है। अगर ये भी मुश्किल है जैसे एकादशी की तिथि, तो फल फलाहार, अगर सिर्फ फल लेने भी मुश्किल है, दूध भी ले सकता है, सब्जियां भी ले सकता है, समाचार भी लेता है, कुतवात के फूल भी लेता है, खीर भी लेता है, ठीक है, हाँ ये भी ठीक है। क्योंकि हाँ भौतिक जगत में यहाँ पर विशेष करके बस शहर में जब रहता है तो बाहर भी काम करना है गृहस्थ के लिए, और विशेष करके माता जी अगर बच्चे छोटे बच्चा है उनके पालन पोषण करना है तो दूध पिलाना है बच्चे को, तो इसलिए दूध भी पीना है, माँ को प्रसाद लेना है, उनके लिए तो मुश्किल ना है और मुश्किल होगा बिना खाना बिना पीना, इसलिए कोई बात ना है। और वास्तव में उपवास रखना जरूरत है, लेकिन सबसे जरूर क्या है, क्योंकि कभी कभी हमने देखा है भक्त लोग उपवास रखता है, ठीक है निर्जाल करेंगे, निर्जाल विशेष करके निर्जाल एकादशी के, लेकिन क्योंकि आदत ना है इसलिए क्या होता है, ठीक है निर्जाल करना है, लेकिन क्या होता है तो ठीक है जल नहीं पीते, घर में रिक्त में है निर्जल एकादशी, मुश्किल हो जाता है, तो लेकिन सोचता है तो जब करता है, लेकिन नींद आती है प्यास लगता है तो गर्मी ऋतु में पानी चाहिए पानी चाहिए, और निर्जल एकादशी है पानी नहीं ले सकता है तो मुश्किल हो जाता है, और सो जाता है क्योंकि जब सोता है तो भूख नहीं लगता है प्यास नहीं लगता है तो आसन हो जाता है। लेकिन वास्तव में निर्जल कैसा रखना है, जागरण होना चाहिए, और ये भी कि सिर्फ दिन में नहीं रात को भी बहुत मुश्किल है, मैंने दो तीन बार किया है, अभी तो वृद्धावस्था में पहुंच गया तो संभव नहीं है, लेकिन युवावस्था में थे तो निर्जल भी किया है भरतवास में भी तो काफी मुश्किल है, लेकिन कभी कभी भगवान की कृपा से मौसम तरु से ठीक है तो हाँ तो कर सकते हैं, लेकिन जब बहुत गर्मी है, और पहले आजकल भी गर्मी ऋतु में जब आजकल यहाँ रहता है भारतवर्ष में भी गर्मी ऋतु में तो गर्मी तो है थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन आज लोग आजकल क्या करते हैं भक्त लोग तो एसी रूम है एसी रूम में रहता है पूरे दिन तो थोड़ा सा आसान हो जाता है, लेकिन पहले जब मैं यहाँ पर आया था 1980 36 साल से पहले एसी नहीं था, और इसके बाद क्या है तो पंखा भी है चलते अच्छा तरह से, और जब बिजली नहीं है जनरेटर है या इन्वर्टर है तो आजकल 24 घंटे चलते रहता है। लेकिन पहले जब मैं पहले आया था ब्रज में वृंदावन गर्मी ऋतु बिजली नहीं है जनरेटर नहीं है इन्वर्टर नहीं है, और ऐसे नहीं है कि जैसे यहां पर कभी बिजली नहीं है आधा घंटे के लिए या एक घंटे के लिए तो होता है, तो जैसे गर्मी रही तुम्हारे ख्याल से एक घंटे के लिए बिजली नहीं है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि जनरेटर या इन्वर्टर है, लेकिन पहले कुछ नहीं था गर्मी ऋतु में, एक बार निर्जल किया है बहुत मुश्किल था एसी तो नहीं था जनरेटर नहीं था इन्वर्टर नहीं था। इसके बाद वृंदावन में ऐसा ना है कि एक घंटे के लिए बिजली नहीं है, कभी कभी दो घंटे के लिए तीन घंटे के लिए कभी कभी चार घंटे के लिए बिजली नहीं है, कभी कभी बिजली के स्थान पे वहां पर समस्या हो गया तो मैंने भी अनुभव किया कभी कभी एक दिन के लिए कभी कभी 2 दिन के लिए बिजली नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन आजकल तो आसान हो गया, क्योंकि अभी तो बहुत ज्यादा भक्त लोग हैं, सब अच्छा तरह से भजन करता है, जप करता है, मां मंत्र को उच्चारण करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवान प्रसन्न होता है। जैसे यहाँ पर तो स्तुति का चरण स्तुति अर्पण करता है, अलग अलग श्लोक उच्चारण करता है, प्रसीदतम, जिससे भगवान प्रसन्न हो, संतुष्ट हो। जब कृष्ण संतुष्ट है पूरे जगत संतुष्ट हो जाता है। और आजकल इसलिए बहुत सारे भक्त लोग यहाँ पर आता है, पहले जब हम यहाँ पर थे दिल्ली में भी, तो अभी बारा मंदिर तो वहाँ पर स्तूप कैलाश है, और पहले सिर्फ एक मंदिर था दिल्ली में, आपको मालूम है, एक छोटा सा मंदिर था, मालूम है कहाँ पर था? और इस भक्त लोग थे सबसे पहले मंदिर, हाँ क्या ग्रेट कैलाश से पहले लाजपत नगर। मैं 1980 यहाँ पर आया पहले बार, लाजपत नगर वहां पर गया, तो ज्यादा भक्त लोग नहीं थे, 6-7 भक्त लोग थे। और तो वहां पर गया कुछ प्रसाद मिलने के लिए, तो और लेकिन इसके बाद तो विशेष करके गोपाल कृष्ण महाराज के प्रयत्न से तो बहुत विकासित हो गया यहाँ पर दिल्ली नगर में। और अभी कितना मंदिर है? 10 मंदिर है लगभग, कितना? 13 मंदिर बन गया, और विशाल मंदिर, बहुत सुंदर मंदिर, और बहुत सारे भक्त लोग आया है, और भक्त लोग जैसे भगवान तो बहुत सुंदर है, भगवान श्री कृष्णा इस भौतिक जगत तो सुंदर पुरुष है, सुंदर स्त्री है, मिस यूनिवर्स है, मिस्टर यूनिवर्स भी है, सुना है, एक दृष्टि से शायद थोड़ा सा सुंदर है, लेकिन और सुंदर भक्त लोग है जो भजन करता है, क्योंकि कृष्ण का स्मरण करता है, जो सबसे सुंदर है, सार ऐश्वर्य पूर्ण भगवान है। इसलिए तो क्योंकि भक्त लोग भगवान की सेवा करता है, जिसे मंदिर में सुबह लेकर रात तक 7 बार भोग लगाता है, 7 बार आरती होती है, तो इससे भगवान प्रसन्न हो जाता है। तो ये सब तो श्रील प्रभुपाद की कृपा से है, और इसके बाद उनके शिष्य यहाँ पर विशेष करके गोपाल कृष्ण की कृपा से अभी बहुत सारे भक्त लोग यहाँ पर है, और बहुत अच्छे तरह से भजन करते हैं, गाते हैं। जैसे तो ऐसे करते हुए भगवान प्रसन्न होता है, और भक्त सब भक्त लोग प्रसन्न हो जाता है। लाजपत नगर जब मैं पहले आया था तो ज्यादा भक्त लोग नहीं थे, और हमारे जैसे तो आंदोलन के शुरुआत में था यहाँ पर भारतवर्ष में भी प्रभुपाद, तो यहाँ पर 1975 तो यहाँ पर शुरुआत किया है हमारे आंदोलन, और सबसे पहले मायापुर में तो और वृंदावन में शिशी गोनीता कृष्ण बलराम राधा श्याम सुंदर अति सुंदर मंदिर और ठाकुर जी स्थापित किया है, और इसके बाद तो उनके शिष्य के द्वारा बहुत सारे मंदिर बन गया। और लेकिन शुरुआत में ज्यादा भक्त लोग नहीं थे, जिससे दिल्ली में भी, और हाँ शुरुआत में तो जब मैं लाजपत नगर मंदिर गया तो वहाँ के भक्त लोग ठीक था, लेकिन वास्तव में अच्छा तरह से वे नहीं करते थे। और लेकिन बाद में गोपाल कृष्ण महाराज के प्रयत्न से तो ग्रहित कलाश में वहाँ पर स्थानांतरित, तो वहाँ पर रहते थे भक्त लोग, और उनकी प्रयत्न से तो राधापाद प्रसाद के मंदिर तो और सेवा वहाँ पर अच्छा हो गया है। और अभी अलग अलग मंदिर में अच्छा तरह से मैं देखता हूँ सेवा होती है अच्छा तरह से। और अभी हमारे कर्तव्य है कि हम जो हमने मिला है, ये विशेष करके ये महामंत्र, ये श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। श्री चैतन्य मुकुट किरणा हरे कृष्ण इतिवान कहा, तो श्री चैतन्य महाप्रभु की मुकुर विंद से ये महामंत्र निकल गया है। श्री चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण के अभिन्न स्वरूप है। राधा भाव द्युति सवितम नौमी कृष्णा स्वरूपम, कृष्ण स्वरूप है श्री चैतन्य महाप्रभु, लेकिन श्रीमती राधारानी का भाव द्युति लेकर आया है। कलियुग के अवतार है, युग अवतार है श्री चैतन्य महाप्रभु। और लेकिन ये युग अवतार है, युगदान में स्थापित किया है, युगदान में है नाम कीर्तन और जप के द्वारा और कीर्तन के द्वारा हमको महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे को चरण करना है। और लेकिन यहाँ पर तो लेख है कि भाव श्रीमती राधारानी के भाव लेकर आया है श्री चैतन्य महाप्रभु। तो वास्तव में दो कारण है, अंत कारण है और बाह्य कारण है जिससे महाप्रभु आया है। तो पहले अंतरंग कारण है, श्रीमती राधारानी का भाव अनुभव करने के लिए आया है। किस भाव से, प्रेम से श्रीमती राधारानी कृष्ण की सेवा करती है, और ऐसे करते हुए भगवान के अनंत गुण, लेकिन विशेष करके चार मधुरिया जो कृष्ण के हैं, जैसे उल्लेख है बिरियर भगवत अमृत, भगवान के तो अनंत गुण है लेकिन उल्लेख है 64 गुण है, और इनमें से चार महत्वपूर्ण सबसे सुंदर है, वेणु मधुरिया है, रूप मधुरिया है और लीला मधुरिया है और प्रेम मधुरिया है। तो जब श्रीमती राधारानी प्रेम से सेवा करती है कृष्ण की, तो ये कृष्ण के अद्भुत गुण अनुभव कर सकते हैं। सुंदर, सबसे सुंदर पुरुष कृष्ण है, रूप मधुर्य। विष्णु भी सुंदर है, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान ही है, रामचंद्र भगवान सुंदर है, द्वारकाधीश सुंदर है, लेकिन सबसे सुंदर है मुरलीधर कृष्ण, यशोदा नंदन गोपीनाथ सबसे सुंदर है। और वास्तव में ब्रज में कृष्णा जब सखों के साथ तो सुंदर है, लेकिन जब गोपिया के साथ है उसी समय सबसे सुंदर है, क्योंकि वहां पर गोपियां सुंदरियां तो है, विशेषकर श्रीमती राधारानी सुंदरी है, सबसे सुंदर है गोपियों में से। और जब कृष्णा श्रीमती राधारानी को देखता है तो आनंदित हो जाता है, परमानंद, परमानंद के स्रोत है, आत्मराम है, अब्त काम है। लेकिन जैसे देखिए, अगर मैं आपको तो क्रोधित होकर अगर कुछ गलती किया है तब पर देता हूं आपको तो हंसता है, अगर जोर से तब पर देता हूं अभी तो हंसता है क्योंकि मैं सिर्फ बोलता हूं, लेकिन वास्तव में तब पर देता हूं क्या कहता है, जोर से तो शायद रोएंगे है ना, और कम से कम तो दुखी तो होंगे, तब पर दिया है जोर से नहीं हंसता है। और जब कोई उदासीन है तो उसी समय जब उनको देखता है ये रोता है, ये उदासीन बाद में है तो उदासीन है तो पूछता है क्या हो गया। जब कोई दुखी है, पर दुख दुखी वासना, अगर कोई दुखी है तो वासना भी दुखी हो जाता है। लेकिन अगर कोई सुखी है, हंसता है तो हम भी हंसते हैं। तो जब कृष्णा राधारानी को देखता है जब हंसती है और सबसे सुंदर है तो कृष्ण भी हंसता है और सुंदर हो जाता है। अगर कोई दुखी है, क्रोधित है, उदासीन है तो उनकी सुंदरता जो है थोड़ा सा कम हो जाता है, अगर उनके रूप भी सुंदर है। लेकिन जब दुखी है तो सुंदरता जो है कम हो जाता है, लेकिन जब सुखी है, आनंदित है, अच्छे विचार है, सत्वगुण में है और सुंदर है, जब आध्यात्मिक अवस्थता है, शुद्ध वैष्णव और सुंदर है, इसलिए कृष्ण सबसे सुंदरता है क्योंकि सबके स्रोत है, भगवान है। और जब गोपियों के साथ है, विशेषकर श्रीमती राधारानी के साथ है, तो उसी समय सबसे सुंदर है। तो श्रीमती राधारानी कृष्ण के गुण रूप माधुर्य वेणु माधुर्य अनुभव करती है और तब अनंत का अनुभव करती है। ये अनुभव करने के लिए महाप्रभु आया है। इसके बाद युग धर्म स्थापित करने के लिए आया है, ब्रज भक्ति देने के लिए आया है, महामंत्र देने के लिए आया है। और महामंत्र के द्वारा तो उत्तम वस्त्र पार पहुंच सकता है जल्दी से, और दूसरे कोई रास्ता नहीं है। ठाकुर जी की सेवा भी करना है, यज्ञ अनुष्ठान भी होता है, करना ही है, भगवान के स्मरण के प्रयास तो करना ही चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कृष्ण नाम, कृष्ण नाम। तो इसलिए हमको अच्छे तरह से जप करना है, कीर्तन में भाग लेना है, इसके बाद दूसरे को भी देना है, महामंत्र देना है। परम दान क्या है, जब दूसरे को बताता है कृष्ण के बारे में, जब दूसरे को महामंत्र देता है, मतलब बताता है दूसरे को आप जप कीजिए महामंत्र के, और जब जप करता है, यह सबसे बड़े दान है, क्योंकि कृष्ण के बिना भी स्वरूप है। कृष्ण नाम चिंताम कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण स्वरूप निरुक्त अभिनात्म नाम नामिना, कृष्ण कृष्ण नाम बिना है। तो हमने ये महामंत्र प्राप्त किया है और अभी हमको दूसरे को देना है, जिसे अलग अलग दान दे सकता है और सेवा कर सकता है, जिसी घर मेरी तुम्हें भी जाल सेवा, विशेष करके ब्रज में होता है गर्मी ऋतु में बहुत सारे लोग हैं जो जल से करता है, जल देता है, जीवी के लिए तो जरूरत है, लेकिन अगर कोई सिर्फ पानी पीता है और इसके बाद प्रसाद भी लेता है लेकिन जपता करता है ठाकुर जी की सेवना करता है, तो वास्तव में तो व्यात में रहता है। तो जल बहुत जरूरत है जीने के लिए, लेकिन और जरूरत है वास्तव में अगर सिर्फ, तो अगर जीते भी कोई जीता है इसमें, इस भौतिक जगत में पानी पीता है और प्रसाद भी खा लेता है, खाना भी खा लेता है, लेकिन भजन नहीं करता है, कृष्ण नाम को चरण नहीं करता है, तो इसका क्या फायदा है। तो जल जरूरत है इस भौतिक जगत में, लेकिन सबसे जरूरत है कि हमको अच्छा तरह से जप करना है, कृष्ण नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कि हम अच्छा तरह से जप करें, कीर्तन करें, और दूसरे को भी जो हमने मिला है दूसरे को देना है। ये वैष्णव है, ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण ठाकुर जी की सेवा करता है, दूसरे को भी बताता है कि कैसे करना है, शास्त्र का ध्यान करता है, भजन करता है, दूसरे को भी बताता है करने के लिए, कुछ ग्रहण करते दान मिलते दूसरे को भी देता है। तो हमने ये महामंत्र मिला है, अभी हमको दूसरे को भी देना है। हरे कृष्णा। तो कोई प्रश्न है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी,
जीवन जलपूत से शुरू किया।
हाँ जी।
और भागवत में हमारे पास आई जल के कारण ही आई कि परीक्षित महाराज को जल की प्यास लगी और उन्होंने महाभारत ये भागवत दे दिया।
हरे कृष्ण। ठीक है, और कुछ? ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की, श्री प्रभुपाद की।